नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गीता नेगी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में राष्ट्रीय नदी अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया। कहा, नदियों की स्वच्छता और जलीय जैव विविधता का संरक्षण देश की राष्ट्रीय प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले के लिए 170 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, युवाओं के सामर्थ्य से भारत विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु बनेगा। और उत्तरकाशी का प्रसिद्ध माघ मेला आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि नदियों की स्वच्छता और जलीय जैव विविधता का संरक्षण देश की राष्ट्रीय प्राथमिकता है। देहरादून स्थित वन्यजीव संस्थान परिसर में राष्ट्रीय नदी अनुसंधान केंद्र के लोकार्पण के अवसर पर श्री पाटिल ने यह बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अनुसंधान केंद्र नदियों और मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े वैज्ञानिक शोध को मजबूती देगा और नदी संरक्षण से जुड़े राष्ट्रीय प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने गंगा नदी को भारत की सांस्कृतिक, पारिस्थितिक और आर्थिक जीवन रेखा बताते हुए कहा कि इस केंद्र से शुरू हुए प्रयास देश की सिमटती जैव विविधता के सुरक्षित भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने गंगा भवन का भी लोकार्पण किया और संस्थान की प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान गंगा सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम में गंगा संरक्षण, जलीय जैव विविधता, सामुदायिक सहभागिता और आजीविका आधारित संरक्षण मॉडलों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान गंगा नदी में जलीय जीवों के संरक्षण के लिए डॉल्फिन रेस्क्यू वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के लिए 170 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जिले में बाढ़ सुरक्षा कार्य, मंदिरों के सौंदर्यकरण, पूर्णागिरी मेला 2026 के संचालन के लिए धनराशि, सड़कों के डामरीकरण, जिला चिकित्सालय में सुविधाओं के विस्तार सहित क्षेत्र के लिए विभिन्न घोषणाएं की। श्री धामी ने माता रणकोची मंदिर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनता से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनसंवाद के माध्यम से जनसमस्याओं का समाधान करना और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर जिले के खटीमा स्थित बीज निगम परिसर में कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच द्वारा आयोजित उत्तरायणी कोठी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्वतीय विकास भवन के निर्माण की घोषणा करते हुए जिलाधिकारी को भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उत्तरायणी मेले को कैलेंडर में शामिल कर आर्थिक सहायता देने और समिति के अनुरोध पर मंच निर्माण की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति और उत्तरायणी पर्व हमारी सांस्कृतिक आस्था और जीवन दर्शन का प्रतीक है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ रही है, जो बेहद सुखद है। उन्होंने कहा कि बदलते समय में अपनी पहचान और सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखना जरूरी है और इस दिशा में ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों के सुख शांति समृद्धि के साथ उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है, जो भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व सूर्यदेव की आराधना, ऋतु परिवर्तन और प्रकृति के साथ सामंजस्य का संदेश देता है। मकर संक्रांति का त्यौहार जीवन में सकारात्मक सोच के साथ निरंतर कर्म के पथ पर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि उत्तरायणी पर्व उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण अंग है, जो सामाजिक समरसता, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करता है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि युवाओं के सामर्थ्य से भारत विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने देहरादून स्थित लोकभवन में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम विकसित भारत 2047 के दौरान विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए यह बात कही। राज्यपाल ने विद्यार्थियों द्वारा विकसित भारत 2047 को लेकर प्रस्तुत किए गए विचारों और संकल्पों की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं ने जिस परिपक्वता और स्पष्टता के साथ अपने विचार रखे हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि भारत का भविष्य मजबूत हाथों में है। राज्यपाल ने कहा कि बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास, अतिरिक्त परिश्रम और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए पूरी निष्ठा और मेहनत से कार्य करने का आह्वान किया। उत्तरकाशी का प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन माघ मेले का आज दोपहर में शुभारंभ होगा। आज ब्रह्म मुहूर्त से ही मणिकर्णिका घाट पर स्नान के लिए ढोलबाजों और देव डोलियों के साथ गांव गांव से लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। जिला पंचायत, नगर पालिका और जिला प्रशासन ने गंगा घाटों पर अलाव की व्यवस्था की है और धार्मिक संगठनों ने गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए चाय की व्यवस्था की है। 8 दिनों तक यह मेला आयोजित किया जाए। जिला प्रशासन के अनुसार दोपहर में मेले का शुभारंभ कंडार देवता की डोली और हरि महाराज का ढोल रिबन काट करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के इस मेले की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह मेला महाभारत काल से जुड़ा है। माघ मेले का पौराणिक नाम बाड़ाहाट को थौलू है। बाड़ाहाट का अर्थ बड़ा हाट यानी बड़ा बाजार है। बड़ाहाट में आजादी से पहले तिब्बत के व्यापारी सेंधा नमक, ऊन, सोना, जड़ी बूटी, गाय, घोड़े बेचने के लिए आते थे। उस समय यह मेला एक माह तक चलता था। तिब्बत के व्यापारी यहां से धान, गेहूं लेकर वापस लौटते थे। यह भी उल्लेख मिलता है कि उत्तरकाशी का माघ मेला कभी राजशाही के नियंत्रण में था। राजशाही के समय माघ मेले में तिब्बत से आने वाले व्यापारियों का हिसाब किताब रखने के लिए रियासत से मालगुजार भेजे जाते थे और अंतिम मालगुजार मुखबा गांव से पंडित विद्यादत्त सेमवाल थे। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने जल से विषैले प्लास्टिक प्रदूषकों को हटाने के लिए नैनो सक्षम तकनीकी विकसित की है। इस तकनीक के माध्यम से प्लास्टिक से निकलने वाले हानिकारक रसायन थैलेट्स को पानी से अलग किया जा सकता है। यह शोध अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका ACS ESNT वाटर में प्रकाशित हुआ है। एक रिपोर्ट
में पाया गया कि विशेष रूप से डिजाइन किए गए नैनो फॉस्फेट कण प्रदूषकों को विघटित करने वाले जीवाणुओं को सक्रिय करते हैं, जिससे कुछ ही घंटों में फ्थेलेट्स को हटाया जा सकता है। फ्थेलेट्स आमतौर पर नदियों, भूजल और अपशिष्ट जल में पाए जाते हैं और पर्यावरण व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने बहुपोषक नैनो फॉस्फेट कण विकसित किए हैं, जो सूक्ष्म पोषक भंडार के रूप में कार्य करते हैं। ये कण जीवाणुओं की आवश्यकता के अनुसार फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और अन्य आवश्यक तत्व धीरे धीरे उपलब्ध कराते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 3 घंटे के भीतर फ्थेलेट्स का लगभग पूर्ण निष्कासन संभव हो पाया। शोधकर्ताओं के अनुसार ये तकनीक नल जल, नदी जल और अपशिष्ट जल जैसे विभिन्न जल नमूनों में सफल रही है। शोध दल का मानना है कि इस तकनीक को अन्य प्रदूषकों के उपचार में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे जल और मृदा शोधन के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में आज शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में शीत दिवस की स्थिति के चलते दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे का असर बना रह सकता है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर के साथ चंपावत, नैनीताल, पौड़ी और देहरादून के मैदानी इलाकों में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है, जिससे सुबह और रात के समय दृश्यता प्रभावित हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में राष्ट्रीय नदी अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया। कहा, नदियों की स्वच्छता और जलीय जैव विविधता का संरक्षण देश की राष्ट्रीय प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले के लिए 170 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, युवाओं के सामर्थ्य से भारत विकसित राष्ट्र और विश्वगुरु बनेगा। और उत्तरकाशी का प्रसिद्ध माघ मेला आज से शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।